एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का अभिवादन। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसने, आप कह सकते हैं, दुनिया की कुछ सबसे सफल कंपनियों के काम करने का तरीका ही बदल दिया है और शायद हमारे अपने लक्ष्य हासिल करने के नजरिए को भी बदल सकते हैं ये किताब।
हाँ बिल्कुल, हम बात करें जॉन डोर की बहुत ही प्रभावशाली किताब मेजर व्हाट मैटर्स। ये उस सिस्टम के बारे में है जिसे OKR कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स।
OKRs सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है।
हाँ लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। आप देखिए, गूगल से लेकर गेट्स फाउंडेशन तक कई बड़े नामों ने इसकी ताकत को माना है
और ये आज के टाइम में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना।
बिल्कुल,
हम सब सोचते तो हैं बड़े बड़े लक्ष्य, यू नो, बिजनेस में या टीम में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी।
हाँ सोचते तो हैं,
पर होता क्या है अक्सर कि वो अच्छी प्लानिंग भी ना बस बस बातों तक रह जाती है, कागज पर।
एग्जैक्टली, अमल करना मतलब एग्जीक्यूशन, वहीं पर गाड़ी अटक जाती है। ये किताब इसी मुश्किल का हल सुझाती है।
अच्छा, तो ये उस गैप को भरने की कोशिश है जो हमारी सोच और हमारे काम के बीच आ जाता है।
हाँ सही कहा, जो स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन के बीच की खाई है। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं जिन्होंने इस तरीके को दुनिया भर में पहुंचाया, जॉन डोअर।
जॉन डोअर, हाँ, सिलिकॉन वैली का एक बहुत बड़ा नाम, क्लाइनर पर्किंस फर्म के चेयरमैन है।
हाँ, और सिर्फ एक निवेशक नहीं है, गूगल, अमेजॉन, इंटुइट जैसी कंपनियां इन्होंने बिल्कुल शुरुआत में उनमें इन्वेस्ट किया।
और सिर्फ पैसा नहीं लगाया, उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी की।
बिल्कुल, उन्हें गाइड किया। तो ये कंपनियों को बनाने वाले, उनकी संस्कृति को शेप देने वाले व्यक्ति हैं। इनका जो नजरिया है वो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि दशकों की जमीनी अनुभव पर आधारित है।
और OKRs के मामले में इनकी बात में वजन इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने इसे खुद इस्तेमाल किया है और सिखाया भी है।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने ये सिस्टम सीखा इंटेल के महान CEO एंडी ग्रोव से।
ओहो, एंडी ग्रूव।
हाँ, ग्रूव को OKRs को रिफाइन करने और इंटेल जैसी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दिया जाता है। सोचिए, इंटेल को मेमोरी चिप्स से माइक्रो प्रोसेसर का पावर हाउस बनाने में OKRs का बड़ा हाथ था।
वाह, और वो गूगल वाले कहना क्या है, वो तो कमाल की लगती है।
हाँ वो तो है ही, 1999 में जब गूगल बस एक छोटी सी कंपनी थी, गैराज में शुरू हुई,
40 लोग भी नहीं थे शायद तब।
हाँ कुछ ऐसे ही, तब जॉन डोअर ने ही लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को ये OKR सिस्टम समझाया था।
अच्छा,
और गूगल आज तक इसका इस्तेमाल करती है। तो डोअर ने इसे सिर्फ बड़ी कंपनियों में नहीं बल्कि छोटे स्टार्टअप्स को इतना बड़ा बनते हुए देखा है OKRs के साथ।
तो ये किताब मेजर व्हाट मैटर्स,
हाँ,
आखिर है क्या, मतलब सिर्फ OKR सिस्टम समझाया है इसमें?
हाँ, मूल रूप से ये OKR सिस्टम को समझने और उसे लागू करने की एक प्रैक्टिकल गाइड है।
हाँ,
पर ये सिर्फ एक कैसे करें या हाउ टू किताब नहीं है।
बिल्कुल,
ये बताती है कि ये जो सरल सा दिखने वाला ढांचा है ना, ये कैसे किसी भी संगठन, टीम या यहाँ तक कि एक व्यक्ति के प्रदर्शन में क्रांति ला सकता है।
क्रांति कैसे, इसका मेन आइडिया क्या है?
देखिए, इसका जो केंद्रीय विचार है वो बहुत सीधा है लेकिन शक्तिशाली है। सिर्फ बड़े लक्ष्य रखना काफी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, असली जादू तब होता है जब आप उन लक्ष्यों की तरफ जो प्रोग्रेस हो रही है उसे लगातार ईमानदारी से और सबके सामने मतलब पारदर्शी तरीके से मापते हैं,
मतलब मेजर करते हैं।
इसीलिए किताब का नाम मेजर व्हाट मैटर्स।
बिल्कुल।
डोअर कहते हैं कि ज्यादातर संगठन अपने स्ट्रेटजी और अमल के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। OKRs इसी तालमेल को बनाते हैं। ये उस सवाल का जवाब है कि लगातार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे लाए जाएं।
और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के CEOs के लिए नहीं है।
नहीं नहीं, जैसा डोअर खुद कहते हैं, ये मैनेजर्स के लिए है, उद्यमियों के लिए है, नॉन प्रॉफिट में काम करने वालों के लिए है, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों को लेकर सीरियस है उसके लिए उपयोगी है।
अच्छा,
ये सिर्फ एक मैनेजमेंट टूल नहीं है बल्कि काम करने और सोचने का एक ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कनेक्टेड और शायद ज्यादा ह्यूमन तरीका है।
सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बेसिक्स क्या है?
डोअर एक बहुत ही सरल फॉर्मूला देते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्लस की रिजल्ट्स यानी मुख्य परिणाम, इन दोनों को मिलाकर बनते हैं OKRs।
ऑब्जेक्टिव प्लस की रिजल्ट्स इक्वल टू OKRs, सुनने में तो आसान है।
हाँ, पर इसकी बारीकियां समझना जरूरी है। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की।
ठीक है, उद्देश्य।
ये बताता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये बड़ा होना चाहिए, महत्वाकांक्षी, प्रेरणा देने वाला और एक्शन की तरफ ले जाने वाला। ये क्वालिटेटिव होता है, मतलब इसमें नंबर्स नहीं होते।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे शहर में सबसे पसंदीदा बुक कैफे बनना या अपने ग्राहकों के लिए एक वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन एक्सपीरियंस तैयार करना, ये दिशा दिखाता है।
समझ गई।
और फिर आते हैं की रिजल्ट्स, मुख्य परिणाम।
हाँ।
ये बताते हैं कि आप उस उद्देश्य तक कैसे पहुंचेंगे। यहीं पर सारी प्रिसिशन और मेजरमेंट की बात आती है।
अच्छा।
की रिजल्ट्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, महत्वाकांक्षी लेकिन यथार्थवादी भी, और सबसे जरूरी मेजरेबल और वेरिफाइबल होने चाहिए। ये क्वांटिटेटिव होते हैं, इनमें नंबर्स होते हैं।
नंबर्स होना जरूरी है?
बहुत जरूरी। डोआर इस पर बहुत जोर देते हैं, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं अगर किसी मुख्य परिणाम में कोई संख्या नहीं है तो वो मुख्य परिणाम नहीं है।
अच्छा, नो नंबर नो की रिजल्ट।
एग्जैक्टली। तो अगर हमारा उद्देश्य था शहर का सबसे पसंदीदा बुक कैफे बनना, तो उसके की रिजल्ट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। पहला, अगली तिमाही के अंत तक हर महीने औसतन 500 नए ग्राहक जोड़ना। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड।
दूसरा, ग्राहक संतुष्टि स्कोर मौजूदा 75% से बढ़ाकर 90% तक ले जाना।
ओके, मेजरेबल, महत्वाकांक्षी।
और तीसरा, कॉफी और स्नैक्स की बिक्री पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 20% बढ़ाना।
मेजरेबल, टाइम बाउंड, ये बताते हैं कि सफलता कैसी दिखेगी जिसे हम ट्रैक कर सकें।
बिल्कुल, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
अब डोअर किताब में बताते हैं कि OKRs इस्तेमाल करने से संगठनों को कुछ सुपर पावर्स मिलते हैं। ये क्या है? बड़े दिलचस्प लग रहे हैं।
हाँ, ये सुपर पावर्स वाला कॉन्सेप्ट मजेदार है। पहला सुपर पावर है फोकस एंड कमिट।
फोकस और कमिटमेंट, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि OKRs आपको मजबूर करते हैं कि आप उन गिनी चुनी चीजों पर ध्यान दें जो वाकई सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
अच्छा, सिर्फ जरूरी चीजों पर?
हाँ। डोर का सुझाव है कि एक समय में, जैसे एक तिमाही में, 3 से 5 से ज्यादा उद्देश्य नहीं होने चाहिए।
सिर्फ 3 से 5? ऐसा क्यों?
जो कि उनका मानना है और अनुभव भी यही कहता है कि अगर हम सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे।
ये बात तो सही है।
ये आपको अच्छी लगने वाली कई चीजों को ना कहना सिखाता है।
हाँ, ताकि फोकस बना रहे।
एग्जैक्टली। ताकि आप सबसे जरूरी चीजों पर हाँ अपनी पूरी एनर्जी लगा सकें। इंट्यूट का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने क्लाउड और मोबाइल पर शिफ्ट होने जैसे बड़े बदलाव के लिए OKRs का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को एक दिशा में फोकस किया।
ये बात तो समझ आती है। बहुत सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा करने से बेहतर है कुछ जरूरी चीजों को बहुत अच्छे से करना। लेकिन सिर्फ फोकस काफी नहीं है, जरूरी ये भी है कि सब एक ही दिशा में चलें। यहीं पर शायद दूसरा सुपर पावर काम आता है, अलाइन एंड कनेक्ट,
संरेखण और जुड़ाव।
बिल्कुल सही पकड़ा।
ये शायद OKR के सबसे शक्तिशाली पहलू है, अलाइनमेंट और कनेक्शन।
वो कैसे?
जब हर किसी के OKRs ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कंपनी के टॉप लीडरशिप से लेकर हर टीम और हर व्यक्ति तक, सबको पता होता है कि बड़े लक्ष्य क्या हैं और कौन किस पर काम कर रहा है।
अच्छा, सब कुछ ओपन?
हाँ, ज्यादातर। तो कमाल का तालमेल बनता है। विभागों के बीच की दीवारें, वो जो साइलोस होते हैं ना, वो टूटते हैं। लोग देख पाते हैं कि उनका छोटा सा काम भी कंपनी के बड़े मिशन से कैसे जुड़ा है। इससे काम का अर्थ समझ आता है, प्रेरणा मिलती है और जुड़ाव मतलब एंगेजमेंट बढ़ता है।
और ये सिर्फ टॉप डाउन नहीं होता होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बॉटम अप भी होता है और टीमों के बीच क्रॉस फंक्शनल भी होता है। माई फिटनेस पैल ने इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम्स को अलाइन किया और बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल की।
पारदर्शिता वाकई शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना और सबको बता देना काफी नहीं होगा। शायद उन्हें ट्रैक भी तो करना होगा।
यहीं पर तीसरा सुपर पावर आता है,
ट्रैक फॉर अकाउंटेबिलिटी।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। OKRs सिर्फ साल में एक बार बनाने और फिर भूल जाने के लिए नहीं है, इन्हें लगातार ट्रैक करना होता है।
कितनी बार?
रोज नहीं, शायद हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक छोटी सी चेक इन मीटिंग हो सकती है। फिर तिमाही के अंत में हर की रिजल्ट को स्कोर दिया जाता है, आमतौर पर 0.0 से 1.0 के स्केल पर।
0.0 से 1.0?
हाँ, और यह एक दिलचस्प बात है।
क्या?
लक्ष्य हमेशा 1.0 स्कोर करना नहीं होता।
अच्छा, फिर क्या होता है?
खासकर अगर लक्ष्य महत्वाकांक्षी है तो 0.6 या 0.7 का स्कोर भी अक्सर बड़ी सफलता माना जाता है।
60-70% भी सफलता है?
हाँ, ये दिखाता है कि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था और टीम ने उसे हासिल करने के लिए काफी जोर लगाया। ट्रैकिंग का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि सीखना है।
सीखना कैसे?
ये देखना कि क्या हमने सही लक्ष्य चुना था, क्या वो ज्यादा आसान था या ज्यादा मुश्किल, अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। ये एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है।
ये 0.6-0.7 वाली बात दिलचस्प है। ये थोड़ा प्रेशर कम करती है शायद, खासकर जब हम चौथे सुपर पावर की बात करते हैं, स्ट्रेच फॉर अमेजिंग, असाधारण के लिए प्रयास करना। ये सुनने में ही रोमांचक लगता है।
हाँ, यहीं पर इनोवेशन और बड़े बदलावों की गुंजाइश बनती है, यहीं पर वो मूनशॉट्स आते हैं।
मूनशॉट्स?
हाँ, डोर बताते हैं कि OKR दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कमिटेड OKRs,
यानी जिन्हें पूरा करना ही करना है।
बिल्कुल, ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें आपको 100% हासिल करना है। ये आपकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे सेल्स टारगेट पूरा करना या किसी प्रोडक्ट को तय समय पर लॉन्च करना। इनमें कोई कोताही नहीं।
ठीक है, और दूसरे?
दूसरे होते हैं एस्पिरेशनल OKRs, इन्हीं को मूनशॉट्स दिखा जाता है।
अच्छा।
ये वो बड़े साहसिक, शायद थोड़े डरावने लक्ष्य होते हैं जो आपको अपनी सीमाओं से बहुत आगे धकेलते हैं।
मतलब मुश्किल लक्ष्य?
हाँ, बहुत मुश्किल। ये वो लक्ष्य हैं जो शायद पूरी तरह हासिल ना हो, लेकिन इनकी कोशिश ही आपको असाधारण नतीजों तक ले जाती है। इनमें, जैसा हमने कहा, 60-70% सफलता भी कमाल की मानी जाती है।
कोई उदाहरण है इसका?
बिल्कुल, सोचिए, गूगल का जीमेल, क्रोम ब्राउजर या एंड्रॉयड जैसे प्रोडक्ट्स, ये सब ऐसे ही महत्वाकांक्षी मूनशॉट्स का नतीजा हैं।
वाह, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आप लोगों को ऐसे लक्ष्य देंगे जो शायद पूरे ही ना हो और फिर उन्हें स्कोर भी करेंगे, तो क्या वो डरेंगे नहीं? मतलब क्या वो सेफ खेलने की कोशिश नहीं करेंगे?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही वैलिड, और यहीं पर डूअर एक अहम बात जोड़ते हैं।
वो कहते हैं
कि महत्वाकांक्षी OKRs को कभी भी सीधे तौर पर किसी के परफॉर्मेंस रिव्यू या सैलरी हाइक से नहीं जोड़ना चाहिए।
अच्छा, क्यों?
क्योंकि अगर ऐसा किया तो लोग जोखिम लेने से कतराएंगे। वो वही लक्ष्य चुनेंगे जिन्हें वे आसानी से 100% हासिल कर सकें। बड़े असाधारण लक्ष्यों के लिए साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मतलब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, बहुत जरूरी है,
ताकि लोग फेल होने से डरे नहीं।
एग्जैक्टली। डूअर कहते हैं, असफल होने की आजादी के साथ ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य मुक्तिदायक भी हो सकते हैं। माहौल ऐसा बनाना जरूरी है कि कोशिश करना और सीखना महत्वपूर्ण है, भले ही आप 100% सफल न हो।
ये तो बात हुई OKRs की, लेकिन डूअर एक और चीज पर जोर देते हैं, CFRs। ये क्या बला है?
CFRs, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। CFRs का मतलब है कॉन्वर्सेशंस, बातचीत, फीडबैक, प्रतिक्रिया और रिकग्निशन, मान्यता।
बातचीत, प्रतिक्रिया और मान्यता।
हाँ, डूअर कहते हैं कि OKRs तो लक्ष्य तय करने का ढांचा है, लेकिन उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया को मानवीय बनाने के लिए CFRs जरूरी हैं। ये पारंपरिक साल में एक बार होने वाली भारी भरकम परफॉर्मेंस रिव्यू का एक बेहतर विकल्प है।
कैसे?
देखिए, बातचीत मतलब मैनेजर और टीम सदस्य के बीच लगातार सच्ची टू वे बातचीत होनी चाहिए, लक्ष्यों पर, प्रगति पर, रुकावटों पर, करियर विकास पर, सिर्फ साल में एक बार नहीं।
ठीक है, और फीडबैक?
तो प्रतिक्रिया भी रेगुलर होनी चाहिए, सिर्फ मैनेजर से कर्मचारी को नहीं बल्कि सहकर्मियों के बीच भी, समय पर स्पेसिफिक और रचनात्मक प्रतिक्रिया। और मान्यता यानी रिकग्निशन, छोटे बड़े हर तरह के योगदान की सराहना होनी चाहिए, सिर्फ नतीजों की नहीं बल्कि अच्छी कोशिशों की, टीम वर्क की, सही व्यवहार की भी पहचान और प्रशंसा होनी चाहिए।
तो ये OKRs के साथ साथ चलता है?
हाँ, बिल्कुल। अडोबी जैसी कंपनियों ने अपने पुराने रिव्यू सिस्टम को हटाकर इस तरह के निरंतर संवाद और प्रतिक्रिया मॉडल को अपनाया है और पाया है कि इससे कर्मचारियों का जुड़ाव और प्रदर्शन दोनों बेहतर हुए हैं। तो OKRs और CFRs मिलकर काम करते हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ बड़े संदेश या सबक क्या होंगे? मेरे लिए तो सबसे पहले वही बात आती है जो डोर ने शुरू में कही, आइडियाज आर इजी, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग।
हाँ, अमल ही सब कुछ है।
अच्छी सोच होना एक बात है, उसे हकीकत बनाना बिल्कुल दूसरी। OKRs इसी अमल वाले हिस्से को मजबूत करते हैं।
बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है पारदर्शिता की ताकत, पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
हाँ, ये तो बहुत पावरफुल लगा।
जब लक्ष्य और प्रगति सबके सामने होते हैं तो न सिर्फ तालमेल बेहतर होता है बल्कि एक तरह की सामूहिक जवाबदेही भी बनती है।
लोग एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, मदद भी करते हैं।
सोचिए अगर हमारे देश में भी सरकारी प्रोजेक्ट्स या कंपनियों में इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी हो कि लक्ष्य क्या है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, तो कितना फर्क पड़ सकता है।
बिल्कुल।
तीसरा सबक जुड़ा है बड़े लक्ष्य रखने और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, स्ट्रेच गोल्स एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी से।
हाँ, वो मून शॉट्स वाली बात।
बड़े सपने देखना और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना विकास के लिए जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव है जब लोगों को फेल होने से डरना लगे, जब असफलता को सीखने का एक हिस्सा माना जाए।
ये भारत के स्टार्टअप माहौल के लिए या हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी सोचने वाली बात है। क्या हम एक्सपेरिमेंट करने और रिस्क लेने को बढ़ावा देते हैं?
सही सवाल है। चौथा है निरंतर सीखने और अनुकूलन,
कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडैप्टेशन।
मतलब OKRs पत्थर की लकीर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें रेगुलरली देखना, समझना कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और जरूरत के हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना या अगले साइकिल के लिए उनसे सीखना, ये एक जीवित डायनामिक प्रक्रिया है। ये सेट करो और भूल जाओ वाला सिस्टम नहीं है।
पांचवा, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि सांस्कृतिक बदलाव लाने का जरिया है।
हाँ, ये कल्चर को बदलता है। OKRs धीरे धीरे संगठन की संस्कृति को फोकस, अलाइनमेंट, जवाबदेही और नतीजों पर ध्यान देने की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं बल्कि काम करने का एक शेयर तरीका बन जाता है।
और छठा?
छठा जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो है इसकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता,
यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी।
मतलब ये हर जगह लागू हो सकता है।
हर जगह? हाँ, जैसा हमने देखा ये सिर्फ गूगल या इंटेल जैसी टेक कंपनियों के लिए नहीं है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे विशाल नॉन प्रॉफिट ने इसे मलेरिया उन्मूलन जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया है।
अच्छा।
संगीतकार बोनो ने अपने वन कैंपेन में गरीबी से लड़ने के लिए इसे अपनाया है। छोटी स्टार्टअप से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक, जहां भी आप क्लैरिटी, फोकस और मेजरेबल प्रोग्रेस चाहते हैं, ये सिद्धांत काम आ सकते हैं।
हाँ, ये व्यक्तिगत जीवन वाला पहलू भी सोचने लायक है। हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं पर कितने पूरे होते हैं?
बहुत कम।
शायद OKR उन्हें ज्यादा ठोस और ट्रैक करने लायक बना सकते हैं। जैसे सिर्फ सेहत सुधारनी है कहने की बजाय ऑब्जेक्टिव हो सकता है अगले 3 महीनों में अपनी फिटनेस बेहतर करना।
और की रिजल्ट्स?
की रिजल्ट्स हो सकते हैं हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट व्यायाम करना, रोज 8,000 कदम चलना और मीठा खाना हफ्ते में सिर्फ 1 बार तक सीमित करना।
बिल्कुल, ये अस्पष्ट इच्छाओं को ठोस एक्शन लेने लायक प्लान्स में बदल देता है। और ये सिर्फ काम या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है।
कोई नई स्किल सीखनी हो,
हाँ,
कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट पूरा करना हो, कहीं भी इसे लागू किया जा सकता है।
बिजनेस लीडर्स इसे अपनी कंपनी की दिशा स्पष्ट करने, टीमों को अलाइन करने और स्ट्रेटजी को एक्शन में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
टीम लीडर्स
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेहतर करने और टीम के हर सदस्य को उनके योगदान का महत्व समझाने के लिए कर सकते हैं। मैनेजर्स बस काम सौंपने की बजाय कोचिंग और विकास पर फोकस करने के लिए, खासकर CFRS के साथ।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि महत्वाकांक्षा और अनुशासन का ये मेल, यानी बड़े सपने देखो लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी फोकस, माप और पारदर्शिता का अनुशासन भी रखो, ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण परिणाम ला सकता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक कल्चर है।
सही कहा। और मेरे लिए सबसे यादगार पहलू है OKRs और CFRs का कॉम्बिनेशन। ये दिखाता है कि लक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया में मानवीय पहलू, वो बातचीत, वो फीडबैक, वो सराहना कितना महत्वपूर्ण है।
हाँ, ये बात सही है।
ये लक्ष्य निर्धारण को सिर्फ नंबरों का खेल बनने से रोकता है। और दूसरी बात, इसकी व्यापकता। ये हमें याद दिलाता है कि परिणाम उन्मुख सोच और निरंतर सुधार के ये सिद्धांत सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया की बपौती नहीं है बल्कि हर उस कोशिश में लागू हो सकते हैं जो दुनिया में या हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। ये वाकई उसे मापो जो मायने रखता है कि विचार को सार्थक करता है।
और शायद एक अंतिम विचार जिस पर सुनने वाले सोच सकते हैं, क्या हम अपने काम करने की जगहों पर या अपनी निजी जिंदगी में इस तरह की कट्टर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तैयार हैं? OKR सिस्टम जितना शक्तिशाली है उतना ही इसे अपनाने के लिए साहस और खुलेपन की भी जरूरत होती है। ये खुद से और दूसरों से ईमानदारी की मांग करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।